ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवत महापुराण से पाठ अष्टम स्कंद द्वादश अध्याय श्लोक संख्या 10। नाहं पराय पुरुषयो न मरीचि मुख्या, जानन्ति यद्विचरितं खलु सत्त्वसर्गा। यन्मायया मुषितचेतस ईश दैत्य, मर्त्यादय किमुत सत्भद्रवृत्तः। नाहं पराय ऋषयो न मरीचि मुख्या, जानन्ति यद्विरचितं खलु सत्त्वसर्गः। यन्मायया मुषितचेतस ईश दैत्य, मर्त्यादय किमुत सत्त्वभद्रवृत्तः। नाहं पराय ऋषयो न मरीचि मुख्या, जानन्ति यद्विरचितं खलु सत्त्वसर्गः। यन्मायया मुषितचेतस ईश दैत्य, मर्त्यादयः किमुत सत्त्वभद्रवृत्तः। शब्दार्थ, न अहम् न तो मैं, परायुः करोड़ों वर्ष जीवित रहने वाले ब्रह्मा जी आदि ऋषयः सप्तऋषि न मरीचि मुख्या न तो मरीच ऋषि आदि जानन्ति जानते हैं जत विरचितम जिससे ब्रह्मांड रचा गया खल सत्व सर्गा निसंदेह भौतिक गुण से उत्पन्न यत मायया जिसकी माया के प्रभाव से उसी तचेतसः मोहित चित्त ईसा हे स्वामी दैत्य असुर मर्त्यादया मर्त्य मनुष्य आदि किमुतः क्या कहा जाए शाश्वत अभद्र वृत्ताः सदैव प्रकृति के निम्न गुण से प्रभावित अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद हे प्रभु सभी देवताओं में श्रेष्ठ माना जाने वाला मैं ब्रह्मा जी तथा मरीचि इत्यादि महर्षि सत्वगुण से उत्पन्न है तब भी हम सभी आपकी माया से मोहग्रस्त है और यह नहीं समझ पाते कि यह सृष्टि क्या है हमारी बात छोड़ भी दे तो उन असुरों तथा मनुष्यों के बारे में क्या कहा जाए जो प्रकृति के निम्न गुणों रजो तथा तमोगुण से युक्त है वे आपको कैसे जान सकते हैं। तात्पर्य वस्तुतः सतोगुणी लोग भी भगवान की स्थिति को नहीं समझ सकते हैं तो फिर उनके विषय में क्या कहा जाए जो प्रकृति के निम्न गुणों रजो तथा तमोगुण में स्थित है हम भगवान के विषय में कल्पना भी कैसे कर सकते हैं। अनेक ऐसे विचारक हैं जो परम सत्य को समझने का प्रयत्न करते हैं किंतु वे निम्न गुणों से युक्त होने के कारण और मद्यपान मांसाहार अवैध मैथुन तथा द्वित क्रीड़ा जैसी बुरी आदत में अनुरक्त होने के कारण भगवान के विषय में किस तरह सोच सकते हैं उनके लिए यह असंभव है। वर्तमान युग के लिए नारद मुनि द्वारा बताई गई पंचरात्रि की विधि ही एकमात्र आशा है। अतएव श्रील रूप गोस्वामी ने ब्रह्मजामल से निम्नलिखित श्लोक उद्धृत किया है श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि की विधि बिना एकांत की हरिर भक्ति रूपात एव कल्पते भगवान की वह भक्ति जो उपनिषदों पुराणों तथा नारद पंचरात्र जैसे वैदिक वाङ्मय की अवमानना करे वह समाज में अनावश्यक उत्पात मात्र है। जो लोग ज्ञानी है और सतगुणी है वे श्रुति स्मृति तथा पंचरात्रि की विधि जैसे अन्य धर्म शास्त्र के वैदिक उपदेशों का पालन करते हैं। भगवान को इस तरह से समझे बिना मनुष्य केवल उत्पात मचाता है। इस कलियुग में अनेक गुरु उत्पन्न हो गए हैं और चूंकि ये श्रुति स्मृति पुराण पांचरात्रि की विधि का उल्लेख नहीं करते अतएव वे परम सत्य को समझने की दिशा में विश्व भर में विकट उत्पात मचा रहे हैं। फिर भी जो कोई उपयुक्त गुरु के निर्देशन में पंचरात्र विधि का पालन करता है वह परम सत्य को समझ सकता है। कहा गया है पंचरात्रस्य कृष्णस्य वक्ता तु भगवान स्वयं। पंचरात्र पद्धति भगवान द्वारा उसी प्रकार कही गई है जिस तरह भगवद गीता कही गई थी। वासुदेव शरणा विदरंज सेव। सत्य को वही समझ सकता है जिसने वासुदेव के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लिया हो। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानमान मांग प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सदुल्लभ। जो वास्तव में ज्ञानी है वह अनेक जन्म जन्मांतर के बाद मुझको समस्त वस्तुओं तथा कारणों का कारण जानते हुए मेरी शरण में आते हैं। ऐसे महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। जिन्होंने वासुदेव के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर रखी है केवल वही परम सत्य को समझ सकते हैं। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयति आसु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम्। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुकी ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। अतएव वासुदेव भगवान की भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवद गीता में शिक्षा देते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सारे धर्म को परित्याग कर केवल मेरी शरण में आओ। भक्त्या माम अभिजानाति जावान जस्यास्मि तत्त्वतः, केवल भक्ति द्वारा ही परम पुरुष को यथारूप में जाना जा सकता है। जब ब्रह्मा जी या शिव जी तक भगवान को ठीक से नहीं समझ पाते तो अन्यों के विषय में क्या कहा जा सकता है, उन्हें तो केवल भक्ति योग के द्वारा समझा जा सकता है। मया सक्त मना पार्थ जोगं जुंजन मदाश्रय असंशय समग्रम यथा ज्ञास्यसि तत्सुणु। यदि कोई वासुदेव कृष्ण को स्वयं के बारे में बोलते हुए मात्र श्रवण करके उनकी शरण में जाकर भक्ति योग का अभ्यास करता है तो वह उनके विषय में सब कुछ जान सकता है, निसंदेह वह उन्हें सम्यक रूप से समझ सकता है। ओम अज्ञानं तिमिरांध्यस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखानितंश। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो ये अष्टम अध्याय के ये अष्टम स्कंद के द्वादश अध्याय में भगवान शिव अब भगवान के पास आकर के उनकी स्तुति कर रहे हैं। स्तुति करने का कारण था कि अभी भगवान ने अद्भुत मोहिनी मूर्ति धारण करके असुरों को मोहित करके देवताओं को अमृत पिला दिए। जब एक खबर शिव जी को पता चला वो बोले अरे मैं तो वंचित हो गया, ये भगवान के नीव अवतार है ना नहीं? अब उनको देखने के लिए बहुत उत्सुक होकर के भगवान शंकर चले। इसमें वर्णन है कि शंकर अकेले नहीं आए थे, भगवान शिव अपने धर्मपत्नी पार्वती के साथ और अपने परिकरों के साथ अपने स्टाफ के साथ आए थे पूरा, और अपने गाड़ी वाड़ी लेकर के स्टाफ के साथ आए। आकर के वो भगवान के पास आकर के उनको बहुत स्तुति कर रहे हैं कि प्लीज वो सीन को और एक बार देखना चाहते हैं। अब आगे अब वर्णन करेंगे, भगवान उनको समझाएंगे क्यों आप देखना चाहते हैं। शंकर भगवान वो अमृत मंथन में भाग नहीं लिए थे देवताओं के साथ, ब्रह्मा और शिव दोनों नहीं थे। अब वो अमृत में नहीं थे, अमृत का आशा नहीं था। अरे ये मोहिनी मूर्ति को देखने के लिए क्यों आए, वो तो कुछ अच्छे काम के लिए हुआ नहीं था, वो तो उनको चक्कर में डालने के लिए हुआ था। लेकिन भगवान शंकर जो काम विजयी है, काम देव को जला चुके थे, उन्होंने भी उसको देखने के लिए इच्छा करके आए हैं और आकर के प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। तो आज की स्तुति में भगवान शिव कहते हैं भगवान को कि जितने सारे देवताओं हैं, देवताओं में श्रेष्ठ मैं माना जाता हूं, यहां तक कि ब्रह्मा जी से भी शिव श्रेष्ठ हैं। बोलते हैं कि सारे देवताओं में महादेव महान मैं हूं, और जो सबसे ज्यादा लंबी आयु वाले ब्रह्मा जी हैं, और जो बड़े बड़े समझदार शुद्ध सत्वगुण में संयमी पुरुष हैं, उनमें से मरीचि आदय, मरीचि आदि ऋषि जो मुख्य मुख्य ऋषि हैं, बोले वो जो तीन कोटि, तो फिर सबसे टॉप उम्र शिव ब्रह्मा और मरीचि आदि, मरीचि मुख्या जो मुख्य मुख्य ऋषि, बोले जानंति ना, बोले हम नहीं जानते हैं आप इस सृष्टि के बारे में, आपके कार्यकलाप के बारे में हम नहीं जान पाए। तो फिर जो अभद्र वृत्ता, जो ये सब थर्ड क्लास गुण वाले हैं, हम जैसे हैं सब, उनका क्या कहा जाए, वो तो कैसे जान सकते हैं, कैसे संभव है उनको जानना। तो ये साक्षात भगवान के सामने स्वयं भगवान शिव अपने पत्नी और परिकरों के साथ खुल्लम खुला बोल रहे हैं बात कि देवताओं में श्रेष्ठ होकर भी मैं नहीं जानता हूं, और सृष्टि के कर्ता प्रथम जीव होकर भी वो भी नहीं जानते ब्रह्मा जी, और जितने जितने इंद्रिय आदि संयम करके, मन को संयम करके बहुत शुद्ध सत्गुण में शास्त्रवेत्ता, वेदवेत्ता और मरीचि आदि मुख्य मुख्य ऋषि, सारे योग सिद्धि में सिद्ध वो लोग भी आपको नहीं जान पाए हैं। ये केवल भगवान शिव यहां कहते हैं, ऐसा बात नहीं, गीता में भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं अर्जुन को, कहते कहते अर्जुन तू मुझे क्या जानोगे, नाम विदुः सुरगणाः प्रहवन्ति नाम हर्षयः। बोले मुझे कभी देवता लोग तो जानते नहीं है, ना ऋषिगण भी जानते हैं। अर्जुन बोले क्यों, आप तो हमेशा उनके साथ में रहते हैं, सब क्यों नहीं जानते। बोले कैसे जानेंगे, अहम आदिर ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः, ये जितने महान महान ऋषि और देवता उनके बाप तो मैं हूं, बाप के बारे में बेटा कैसे जान पाएगा, तो नहीं जानते, उनके आदि तो मैं हूं, तो इसलिए आदि को नहीं जानते हैं। तो भगवान भी यही बात कहते हैं, शिव जी यही बात कहते हैं, और हम देखते हैं भागवत में जब ब्रह्मा जी अघासुर वध लीला के कारण आए थे भगवान को देखने के लिए, और भगवान को भोजन लीला में देखे, और जो वत्स हरण लीला किए, और ब्रह्मा जी ने मोहित हो गए, ब्रह्म विमोहन कहा जाता है उसको, ब्रह्मा जी स्वयं मोहित ऐसे हो गए। जब ऐसे मोहित हो जाने के बाद उनको पता चला मैं गलती किया हूं, तो उन्होंने माफी मांगे, दंडवत प्रणाम कर करके जो माफी मांग रहे थे, इसमें एक बड़ी लंबी अध्याय है ब्रह्मा जी की स्तुति, दसम स्कंद में 14 अध्याय में ब्रह्म स्तुति है, जिसमें ब्रह्मा जी ने माफी मांग रहे कि मेरा गलती हो गया, प्लीज एक्सक्यूज मी। तो इसी में ब्रह्मा जी कई बार ये कहते हैं कि प्रभु तो कैसे जान सकते, जानंत एव जानंतु। बोले कोई अगर बोलता है कि मैं जानता हूं, भले ये कह दे ऐसे, ये हुड़बो कैसे बोलने दो पागल, लेकिन मैं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ये खुल करके ऐलान करता हूं कि आपको मेरे ये काय मन वाणी इसके द्वारा किसी प्रकार से मैं जान नहीं सकता, जान नहीं सकता, जाना नहीं नहीं जान ही नहीं सकता, बोल दी खुलू ना, संभव ही नहीं, मेरे से संभव ही नहीं। आगे चल करके एक श्लोक में कहते हैं कि आप तो अवतार लेते हैं बारंबार, कल्पे कल्पे सुजामी हम, भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी के हरेक दिन में एक बार आते हैं ब्रह्मा भगवान, बोले एवरी डे आप आते हैं, लेकिन आप हितावतरण से इसी रहस्य गुणात्मानं तु गुणं विमाते, बोलते आपके इस लोक हित करने के लिए आप अवतीर्ण होते हैं, इस साधारण बद्ध जीव को उद्धार करने के लिए, उनके कल्याण करने के लिए आप उतरते हैं, अवतरित होते हैं, आपके जो हित के कारण को हित अवतारस्य, आपके ईश्वरता को कौन जान सकता है, किन किन गुण लेकर के आते हैं, कितने अच्छे गुण आपके अंदर है, कितने कल्याणकारी हित गुण आपके अंदर है, उसको अगर कोई काउंट करने चले, बोले ये महामूर्ख माना जाएगा। तो ब्रह्मा जी का कहना है कि कोई अगर, बोलते बड़े बड़े वैज्ञानिक गणक इसी धरती का नहीं, धरती लोग तो कैलकुलेशन मिस्टेक होता है हमेशा, ऊपर लोक वाले सिद्धादि लोक में उच्च लोक में जिनका गणना हमेशा निर्भुल होता है, वो लोग आपने बड़ी बड़ी इंस्ट्रूमेंट साथ में ले करके अगर काउंट करें, बोले क्या काउंट करें, बोले अगर जैसे हम जैसा अगर देखा जाए, अभी अब बिल्डिंग आदि काम करते हैं जो रेत होता ना, सीमेंट से रेत मिलाते हैं, आपको आधा किलो रेत दे दें, आधा किलो 250 ग्राम रेत दे दें, बोलो काउंट करके बताओ कितने डस्ट पार्टिकल है, आप में से कोई है गिन दे, साल भर पूरा एक साल लगा कर गिन सकते हैं, नहीं, 200-250 ग्राम को गिन नहीं सकते हैं, और एक ट्रक लोड अगर बालू दे दें तो, अरे यही संभव क्या है। अब भगवान कहते हैं ट्रक लोड नहीं, बोलते सारे ब्रह्मांड को अगर चूर चूर कर दिया, ग्राइंडिंग कर दिया, पीस दिया जाए, पीस करके पाउडर करके वो दिया जाए, बोले उसको गिनो और कितने ट्रक लोड होगा वो। अब एक एक नदी के पट्ठा से पता नहीं हम 15 साल से देखते हैं ट्रक लोड जा रहा है, अभी खत्म ही नहीं हुआ। अब बोलते हैं सारे ब्रह्मांड को पीस करके धूल बना करके पाउडर करके किसी को गिनती करने के दिया जाए, बोले डस्ट पार्टिकल को गिनो। हम तो स्वप्न में कल्पना भी नहीं कर सकते बात को, लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप लोग नहीं, सिद्ध लोक में बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट लेकर के उसको गिनेंगे, सुकल्प ही कोई कल्प लगेगा, बहुत समय लगेगा, लेकिन गिन डालेंगे, गिन सकते हैं, ऐसे ऐसे हैं लोग जो गिन सकते हैं। बोले अगर गिन डालेंगे पूरे समुच्चय ब्रह्मांड को पीस करके उसके डस्ट को अगर गिना जाए, पार्टिकल को अगर भले वो गिन ले, बोले तभी कम पड़ेगा, उसमें और ऐड करना पड़ेगा कुछ संख्या, ना क्या भूपांसव खे मिहिका, बोलते आकाश में जितने बादल है, जितने बादल आकाश से मंडरा रहे, उसे हम तो कोई उसका लिमिट नहीं है, अनंत आकाश में अनंत बादल है, बोलते सारे बादलों के अंदर कितने वाटर पार्टिकल मॉलिक्यूल है, पार्टिकल उसको भी गिनना पड़ेगा, वो और सटल है उससे, ये थोड़ा ग्रस है उससे और सटल वाटर पार्टिकल, उसका गिनो और उसको प्लस करो उसमें भू पान सब खे मिहिका, और बोले वो भी कम पड़ेगा, उसके साथ और जोड़ेगा, बोले जितने इल्यूमिनेटिंग ग्रह है, जैसे सूर्य चंद्र तारका आदि आदि जितने लाइट निकल रहा है, ये सारे ज्योतिष का जितने आलोकित ग्रह है सूर्य चंद्र आदि, उनके लाइट पार्टिकल को गिनो, कितने आलोक कण है और सटल है, उसको भी कोई गिने, अगर कोई गिन भी डालते हैं उसको संभव नहीं है, फिर भी गिन करके तीनों को मिला दे, तभी भी आपके गुण के सामने कमी पड़ेगा, आपके गुण इतने हैं कि गिना ही नहीं जा सकता, ये ब्रह्मा जी के कहना है। इतने करुणा वरुणालय है भगवान, तो सारे ब्रह्मा देवता ब्रह्मा शिव भगवान सभी कहते हैं भगवान के गुणों को तो गिन नहीं सकते, भगवान के जो जाना नहीं जा सकता, किसी प्रकार से जान नहीं सकता, तो फिर तो हम लोग भगवान पर कैसे जानेंगे, जब भगवान के बारे में जानेंगे नहीं तो उनके प्रति हमारे श्रद्धा भक्ति कैसे प्रेम कैसे उत्पन्न होगा, बिना जाने प्रतीति प्रतीति की विधि प्रतीत होगा ही नहीं, जानना पड़ेगा संबंध ज्ञान, तो कैसे जान सकते हैं, तो वो भी कहते हैं निज बल चेष्टा प्रतिभर सा छाड़िया त तुम्हार इच्छाए अच्छी निर्भर करिया। कोई भी बड़े बड़े सिद्ध महात्मा भी ये बात कहते हैं कि अपना बल चेष्टा स्पर्धा के प्रति कोई भरोसा नहीं कि मैं प्रयास करके जान सकता हूं, नो, नहीं जान सकता। तो फिर क्या उपाय? नहीं, केवल अगर आप चाहें, अगर भगवान चाहें जना देने के लिए तो जना सकते। ईश्वर कृपा ले स है छे जाहरे सहित ईश्वर तत्व जानी बारे पारे। बिना ईश्वर की कृपा से ईश्वर को कोई जान नहीं सकता। ईश्वर को जानने का एकमात्र उपाय है ईश्वर की कृपा। जैसे सूर्य को देखने के लिए कोई टॉर्च लाइट लगाकर सूर्य को देख सकता है? सूर्य को देखने के लिए सूर्य की लाइट चाहिए, सन लाइट से सन को देखा जा सकता है। इस प्रकार भगवान की कृपा से भगवान को जाना जा सकता है। दिस इज द ओनली वे, केवल एक ही उपाय है। तो इस प्रकार जब तक भगवान की कृपा हम प्राप्त नहीं करते हैं तब तक भगवान को जानने का संभव नहीं। तो भगवान की कृपा तो वही ले दे करके सभी सिखाते हैं कि अगर आप चाहें हमको मालूम करा दे तो भगवान ऐसे किसी को भी कृपा कर सकते हैं और किसी को ज्ञान दे सकते हैं। भगवान गीता में कहते भी हैं कि सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्ट, मैं सभी के हृदय में बैठा हूं, सन्निविष्ट हूं। अरे बैठकर क्या कर रहे हैं आप, यहां क्यों बैठे हैं? हमारे हृदय में आप क्यों बैठे हैं? क्या काम है? सर्वस्य चाहं, केवल आपका नहीं सभी के हृदय में बैठे, सबके हृदय क्यों बैठे भाई? सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टम मत्त, बोले बैठ करके मैं ऑपरेट कर रहा हूं। क्या ऑपरेट कर रहा हूं? स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, स्मरण में दिलाता हूं, स्मृति और ज्ञान भी दिलाता हूं और भुला भी देता हूं। नॉलेज फॉरगेटिंग रिमेम्बरान सब तक सभी कंट्रोल में करता हूं, बोले सबके अंदर बैठ करके रेगुलेटर उनके हाथ में है। वो याद दिलाया तो दिलाएंगे, नहीं दिलाते नहीं दिलाएंगे। आप कितने हाथ पर पिटने से क्या हो? तो ये भगवान की स्थिति है। तो भगवान के इसी प्रकार से जानना है कि एक बार प्रभुपाद जी ने विदेश में एक जगह पर कक्षा ले रहे थे। तभी जमाने में जो प्रभुपाद जी स्वयं थे अब क्लास थे तो बड़े बड़े बुद्धिजीवी कुछ लोग प्रभुपाद जी के कक्षा में आते थे। तो कुछ ऐसे लोग थे बड़े बड़े पढ़े साइंटिस्ट लोग कुछ बैठे थे। तो प्रभुपाद जी ने उनको भगवान के ऐसे अचिंत्य शक्ति के बारे में समझा रहे थे। तो प्रभुपाद समझा रहे थे कि भगवान ऐसे हैं, पूरे ब्रह्मांड में कण कण में सभी में भगवान व्याप्त हैं, लेकिन भगवान किसी में नहीं है, सबसे परे हैं। इसकी ऐसे अद्भुत शक्ति को भगवान के समझाने के बाद जो सुन रहे थे लगभग 40-45 मिनट प्रभुपाद जी ने इस बारे में समझा है। तो एक विद्वान व्यक्ति ने उठकर प्रश्न का बोला, स्वामी जी प्रश्न क्या है? ना आई कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ इट कैन पॉसिबल कि कैसे संभव है कृष्ण सब में है और कृष्ण बोलते मैं किसी में नहीं हूं, मैं सभी में हूं और मैं किसी में नहीं हूं, वो कैसे? प्रभुपाद जी बोले, मैं तो आपको यही घंटे भर यही समझा रहा था। समझा नहीं ना? क्या नहीं समझ में? बोले यू शुड अंडरस्टैंड दैट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, दिस इज द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। प्रभुपाद जी बोले, मैं यही आपको समझा रहा हूं कि आप अच्छी तरह से समझ लो कि मैं समझ नहीं सकता। अगर ये समझ लिया तो कुछ समझा बने दैट यू शुड अंडरस्टैंड दैट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। यस, दिस इज द अंडरस्टैंडिंग। तो यहां भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि मैं देवताओं के श्रेष्ठ के रूप में ब्रह्मा जी आयु के हिसाब से और सत्वगुण साधना संयम आदि की दृष्टि से मरीचि आदि वो लोग नहीं जान पाए, ना जानने के साहस करेंगे। बाकियों तो किमुतः, उनका बारे में क्या कहे, छोड़ो उनको। तो क्या शंकर जी नहीं जानते भगवान को? भगवत तत्व के बारे में उनसे बढ़कर कोई और महाजन है? पक्का मालूम है उनको, पक्का पता है, तभी तो आए हैं। तभी तो बात बता रहे हैं कि हम नहीं जान सकते करके, उनको पता है इस बात को इसीलिए बता रहे हैं। लेकिन ये इसे क्यों कह रहे हैं कि हाँ देवताओं के रूप से नहीं जाना जा सकता, लंबे आयु लेकर के जान लूंगा नहीं जान सकता, आपने इंद्रिय बल साधना संजमादि के द्वारा नहीं जान सकता, लेकिन भगवत कृपा से जाना जा सकता है। तो ये भगवत कृपा पाने के लिए ही तो आए हैं। भगवान शंकर एक महाजन है, इसलिए वो सिखाते हैं। किस महाजन को? उन्होंने एक वैष्णवानंग यथाशंभु परम भक्त के, श्रेष्ठ भक्त के नाते भगवत ज्ञान के पूर्ण ज्ञाता है, अच्छी तरह से पता है उनको भगवान के, तभी तो अमृत मंथन में आए नहीं मिली। अमृत से क्या मतलब है? ये अमृत लेकर क्या करूं? असली अमृत में ले रहा हूं नमामृतम, ये अमृत से क्या मतलब है? वो नहीं आए थे। और भगवान भी ऐसे महान भक्त जो हमेशा भगवत नाम में मत रहते हैं, तो उनको सम्मान करने के लिए भगवान ने जब समुद्र मंथन से 20 निकला तो बोले भाई चलो, 20 निकला, सारे असुर और सुर सब बोले भगवान के पास आए तो मर जाएंगे अभी। तो भगवान जिनके दृष्टि में अमृत है, अभी अमृत मंथन के शुरुआत से जब मंदराचल के सब मर रहे थे, इंजर्ड हो रहे थे, भगवान को दृष्टि पास से सबको ठीक कर दिए। तो भगवान के दृष्टि से सारे 20 से अमृत हो सकता था, लेकिन भगवान ने किए नहीं, यहां उपस्थित रहे थे लेकिन किए नहीं। सबको बोले नहीं चलो भगवान शंकर के पास जाना होगा, उनके पास लेकर गए। भगवान ही हमेशा चाहते थे कि भक्तों को गुणगान किया जाए, भक्तों को प्रशंसा देने के लिए भगवान हमेशा व्यग्र हैं, वही चाहते हैं। तो इसलिए समुच्चय प्रजापति सुर असुरों को लेकर के शंकर भगवान के पास आए और ऐसे स्तुति किए उनके, ऐसे उनके गुणगान किए कि शंकर भगवान बोले क्या हो गया, सुबह सुबह से आज आकर के सारे मेरे इसी प्रशंसा कर रहे हैं क्या? जो सही माने में भक्त होते हैं, भगवान के जो सच्चे भक्त होते हैं, उनका एक गुण होता है कि वो अमानी होते हैं, अपने मान कभी नहीं चाहते ना, अपने सम्मान को 20 के जैसा मानते हैं। उनका ना, अब उनके सामने, उनके स्वामी भगवान के सामने सारे देवता असुर ऋषि सब मिलकर के उनको खूब सम्मान करते हैं। शंकर जी तो बड़ा बोर लगा, बोले ये क्या मेरे बजे तो क्यों कर रहे हैं सुबह सुबह आकर। अब भगवान शंकर देखे तो बोले चले जा रहे हैं, बोले क्या बताओ ना, प्लीज 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 हेल्प करो, बचाओ बचाओ बचाओ, आप ही हैं, आप ही, ऐसे ऐसे स्तुति किए प्रशंसा के। भगवान शंकर बोले अरे बोलो तो भाई, क्या करूं आपके, क्यों अपने हाल उगला कर रहे हैं? तो जब पूछे, सारे देवता असुर हाथ जोड़ के शंकर भगवान बोले प्रभु कृपा करके आप ही बचा सकते, क्या करूं ना, प्लीज कृपा करके 20 पी लीजिए। हाँ, जो स्वार्थी लोग होते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं, आपने स्वार्थ साधन के लिए दूसरे के पास जाकर खूब गिड़गिड़ाएंगे, प्लीज हेल्प मी, बचाओ, क्या बचाओ, क्या मदद करूं ना, आप पॉइजन पी लीजिए। अरे ये कोई किसी को सोचने के लायक बचाओ, कैसे पूछ सकते हैं इसको? लेकिन इतने उन्होंने स्वार्थ के चलते थे, वो जाकर शंकर भगवान हाथ जोड़ बोले अभी पॉइजन आप पी लीजिए, और क्या 20 निकला है। शंकर भगवान भी बोले अच्छा तो मैं गृहस्थी हूँ, माताजी से पूछ लेता हूँ। तो अपने धर्मपत्नी से पूछे कि देखिए ये लोग सारे आए हैं और मुझे बोलते हैं मैं 20 पी जाऊं, आप बताए कोई पतिव्रता स्त्री होगा अपने पति को परमिशन देगा कि 20 पी लो उसके सामने? अब देवता लोग सोचे कि अब शंकर जी तो मैडम के परमिशन के पास जा रहे हैं, ये थोड़ी देंगे, तो गया तो शायद काम नहीं बनेगा। लेकिन ये मैडम भी ऐसी थी, वो भी अपने पति की महत्ता को जानती थी, उन्होंने ही बोल दी बोले ठीक है आप पी लीजिए। हाँ, उन्होंने परमिशन दे दी। तो भगवान शंकर आकर के 20 पिए, 20 तो पिए, सारे देवता असुरों को रक्षा किए 20 के प्रभाव से, लेकिन उनका मन में ये बड़े ये रह गया आंठ की, मेरे प्रभु सभी को लेकर के उनके सामने मेरे जो इतने सारे सम्मान किए, मेरे स्तुति की, उसका क्या कॉन्ट्रैक्ट करूं, उसका क्या करूं, इतने भारी सम्मान मेरे सामने सभी को लेकर मुझे कराए, उसका क्या कर सकता हूं। तो मन में हमेशा यही सोच में थे क्या करूं, उसके लिए क्या प्रतिकार हो सकता है। और जैसे भगवान स्वयं सारे असुरों और सुरों के सामने लेकर के शंकर जी को इतनी भारी प्रशंसा करवाए, जो साइवाइट थे, जो शिवगण थे, वो तो यही से पूछ में हाथ लगाकर घूमने लगे, बोले देखा वैष्णव के सामने आप बोल रहे थे ना, देखो आपके थे ना, आप आपके नेता भी है ना, हाथ जोड़ के आके से बैठे थे ना, शंकर जी अगर ना होते आज दुनिया रहता ऐसे। और सभी शंकर जी देख ली हो तो मुझे ऐसे करवा दिए, मुझे इतने बढ़ावा दिए, और मेरे जो स्टाफ है उनको तो हंगार बढ़ गया कि हम विष्णु से भी ऊपर के, उनके सामने वो विष्णु ही को कर पा रहे थे, शंकर जी ने मदद की विस्पान की। तो शंकर जी ने इसी ताक में थे कि इसका कॉन्ट्रैक्ट में क्या करूं प्रतिकार। तो जब अभी उनको पता चला भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके असुरों को मोहिन किए, मोहित किए, ये भगवान ने देखिए इतने इमीडिएट बुद्धि, भगवान की जो बुद्धि है, जब असुरों ने धन्वंतरि के हाथ से छीन लिया अमृत कलश, देवताओं ने तो बिल्कुल हताश हो गए, बोले देखो मेहनत तो हम पूरा भी किए, अब बेकार गए, सारे लेकर चले गए, बिल्कुल इतने मुरझा गए, दुखी हो गए। भगवान बोले कोई चिंता की बात नहीं, बैठा चुपचाप ना, क्या चिंता नहीं करेंगे, छीन लिया वो मिलेगा थोड़ी, बोले चुप बैठो। अब भी अभी अमृत मंथन जब चल रहा था, अमृत निकलने से पहले लक्ष्मी निकली थी, लक्ष्मी निकली थी और सभी को सिलेक्ट करते करते, रिजेक्ट करते करते भगवान को सिलेक्ट की, भगवान के साथ शादी हुआ था अभी अभी, नारायण को लक्ष्मी नारायण दोनों खड़े हैं, अभी उनका विवाह हुआ था, लक्ष्मी साथ में थे भगवान के साथ, लक्ष्मी के सामने भगवान से ऐसे मेकअप किए, पता नहीं कोई मेकअप रूम तो था नहीं वहां, लक्ष्मी जी को पता नहीं चला ये कौन है भाई, इतने सुंदरी स्त्री के रूप लिए कि माता लक्ष्मी को भी बताना चला, उनके सामने और सारे देवताओं के सामने ऐसे रूप लेकर के गए, क्योंकि ऐसे परिस्थिति में जब असुरों से इस प्रकार काम निकालने के लिए, उनके मन को बदलने के लिए, उनके हृदय को जीतने के लिए जो आवश्यक है वो है मोहिनी मूर्ति। ये टेक्निक भगवान से ये भौतिक ब्रह्मांड के लोग भी सीख गए हैं, इसलिए आजकल जितने एडवर्टाइजिंग एजेंसी, जितने होर्डिंग, जितने रिसेप्शन काउंटर, ये सब जितने प्रकार होता है ना, ये सब लेडीज को रखते हैं मोहिनी मूर्ति, ताकि आसुरिक जो आसुरिक मेंटालिटी है, आसुरिक बुद्धि जो हम लोग से, आपको हमारा दिमाग खराब करने के लिए, सबको काम निकालने के लिए मोहिनी मूर्ति का अप्लाई सब जगह में होता है। तो भगवान ने इसको अप्लाई करके असुरों से अमृत छीन लिए और उन्हीं के सामने देवताओं को पिला दी, उनके सामने ऐसे मोहित हो गए थे, देख रहे थे उन भगवान लेकर के अमृत, उनको तो बोले कि मैं अमृत पिला दे रहा हूं आपको, बाद में पिलाऊंगा करके, ऊपर ऊपर पानी पानी उनको पिलाता हूं, नीचे नीचे जो गाढ़ा गाढ़ा माल है सब आपको दूंगा, ऐसे करते वो लेकर के पूरा भर भर करके लोटा ग्लास भर के दे रहे थे उनको। असुर लोग देख रहे थे, सोच रहे थे बचेगा ही नहीं हमारे पास, तो सोच रहे थे, इधर देख रहे थे बलि महाराज कह रहे सर कैसे दे रहे, चुप है देख नहीं रहे, वो खराब सोचेगी, नाराज हो जाएगी, ऐसे सोच रहे बैठो, आपस में ऐसे मुड़ भिड़ झगड़ के बैठ रहे थे, हार्ट बीटिंग बढ़ रहा था उनका कि क्या होगा कि नहीं होगा, लेकिन क्या करें, इतने मोहित हो चुके थे इस हालत में थे। तो इस प्रकार उनको मोहित करके अमृत पिला दिए। जब ये बात भगवान शंकर को पता चला तो शंकर भगवान बोले, वो तो काम चल करके चले गए, भगवान जा चुके हैं, बोले अरे मैं तो मिस कर गया क्या, अब आपको क्या आवश्यकता है, आप इतने बड़े भक्त है, साक्षात पार्वती देवी साथ में है। तो शंकर भगवान जैसे संयमी पुरुष को कोई आवश्यकता नहीं था, लेकिन उन्होंने क्यों आकर के भगवान को भी इतनी बड़ी स्तुति कर रहे हैं, और स्तुति करके भगवान को प्रसन्न करते हैं, प्रभु प्लीज मुझे और एक बार वो सीन देखना चाहता हूं। आप देखना चाहते हैं तो भगवान ने समझा आप क्यों देखना चाहते हैं, मैडम है साथ में और आप भी अपने स्टाफ के साथ हैं, इसे क्यों शंकर भगवान। अब भगवान समझ गए उनके स्तुति से, उनके अनुभव से कि क्यों देखना चाहते हैं। वो इसलिए देखना चाहते हैं कि सारे पब्लिक को, विशेष करके उनके गण को दिखाना चाहते हैं कि देखो मैं कैसा है मेरे प्रभु के सामने। उनके एक सामान्य मोहिनी रूप के सामने मेरा क्या हालत हो रहा है, आप मुझे उनके सामने समान कर रहे हैं, किसी कीमत से मैं उनके साथ कैसे कंपेयर तुलना चुके हूं, किसी प्रकार से उनके साथ समक्ष नहीं हूं। ओ है मैं हूं, भगवान भगवान है मैं हूं। इस बात को सर्वसाधारण से प्रमाणित कर देने के लिए, विशेष करके आपने सबगणों के लिए, आपने जो लोग जो सोच रहे थे कि अब गर्भपात है भगवान शंकर नहीं है तो आज विश्व को सौग रक्षा कौन करता, ये उनके जो भावना है, इस भावना को बिल्कुल काउंट्राक्ट करने के लिए नहीं, ये तो भगवान के लीला मात्र है, मुझे सम्मान देना चाहते थे, लेकिन ये मत कभी सोचो कि वो कुछ मैं कुछ हूं बड़े वो छोटे होंगे, नहीं, भगवान कुछ भी करे भगवान भगवान। एक सामान्य रूप बदल दिए तो मैं जैसे शंकर, अब आपने गृहस्थी होकर भी, परिवार के साथ होकर भी, इतने काम विजयी होकर भी, इतने संयमी होकर भी, अब मेरा हालत इतने बिगड़ जाता है तो बाकियों का क्या हालत हो सकता है। तो शंकर भगवान इस समुच्चे संसार को ये महान शिक्षा, ये भक्ति का बहुत उच्च कोटि की शिक्षा है, अमानी मानद, इस स्थिति को समाज के सामने दिखाने के लिए भगवान शंकर जा करके भगवान के सामने ये स्तुति कर रहे हैं, ये प्रशंसा कर रहे हैं ताकि कृपया मुझे और एक बार रूप दिखाइए। भगवान को, शिव को क्या पता नहीं था भगवान की सुंदरता रूप गुण कैसा है क्या है, पता था, लेकिन उन्होंने पब्लिकली दिखाना चाहते हैं, और पब्लिकली भगवान मोहिनी रूप में आए और दौड़ते रहे, भगवान शंकर उनके पीछे दौड़ते रहे, उसी कॉलोनी के अंदर गए जिसी कॉलोनी में उनका फॉलोअर सब रहते थे, वो सब देखते बोले वाह सारे ऐसे हालत है। तो ये पूरी भागवत में कहीं भी प्रसंग लीजिए, किसी अवस्था में देखें कि जितने बड़े बड़े देवता हैं, ऋषि मुनि, सब चांस ढूंढ ढूंढ करके भगवान की प्रशंसा करते हैं, जिस जिस स्थान पर जिस जिस कारण में भगवान कभी प्रकट हुए, प्रकट जहां तहां होते ही तुरंत सारे देवता लाइन करके आ जाते हैं, वो सीरियली सब स्तुति करते रहते हैं, हमेशा हर एक प्रसंग में देखेंगे जहां जहां भगवान आए सीन पर, भगवान जैसे आए उनको पता चल जाता है, तुरंत आते हैं सारे स्तुति, हर जगह में स्तुति, सारे देवताओं की स्तुति, गंधर्व किन्नर सारे जिनको थोड़ा पता है भगवान के बारे में, सारे आकर के हाथ जोड़ के बताते हैं सारे ऐसे हैं, सारे ऐसे स्तुति करते रहते हैं। वो भागवत में सारे स्तुति ही प्रधान है, जितने वरिष्ठ बड़े बड़े प्रधान समझदार लोग हैं उन्हीं का स्तुति से पूर्ण है पूरा भागवतम, भगवान के बारे में सब लोग कहे हैं। तो इसी को व्यास देव जी ने इस प्रकार दिए हैं कि इसको जानकर जब इतने बड़े बड़े लोग, इतने समझदार ऋषि मुनि देवताओं में श्रेष्ठ भक्त सभी जब इस प्रकार सब एक साथ में हमेशा यही बात कह रहे हैं, तो इसी को हमको जानना चाहिए कि यही है तत्व, भगवान इस प्रकार है। इसलिए भगवान शंकर, ब्रह्मा, ऋषि मुनि, जितने बड़े बड़े महापुरुष हैं, महाजन हैं, सब हरेक प्रकार से, सब प्रकार से भगवान कैसे कहते, भगवान स्वयं भी कहते हैं, बोलते हैं कि जो मुझे इस प्रकार ठीक से कोई जान ले, गीता में भगवान कहते हैं कि क्या है 15 अध्याय में, जो मुझे असमूढ़, जो मुझे पुरुषोत्तम करके जान लेता है, नहीं 15 अध्याय का लास्ट 18-19 वाला श्लोक है, जो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत, यो माम एव असमूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम्। बोलते जो माम एव, मुझे ही, मैं ही पुरुषोत्तम हूं, माम एव, जो मुझे निश्चय करके जान लेता है मैं ही पुरुष उत्तम हूं, इतना अंडरस्टैंडिंग जिसका हो जाता है। यो माम एव असमूढ़, मूढ़ मन मूर्ख, समूढ़ मतलब अच्छा तरह से मूर्ख, असमूढ़ मतलब जो अच्छा तरह से मूर्ख नहीं है, वो मतलब अच्छी तरह से जानकार है, ज्ञानी है। ये असमूढ़ व्यक्ति अगर अच्छे तरह से जान लेता है कि मैं ही पुरुषोत्तम हूं, यो माम एव असमूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम्, केवल इतने जानने मात्र से क्या होता है ना, स सर्ववित, वो सर्वज्ञ हो जाता है। केवल भगवान को सर्वश्रेष्ठ पुरुषोत्तम करके जानने मात्र से आप सर्वज्ञ हो सकते हैं, सर्ववित, स सर्ववित। अच्छा तो सर्ववित हो गया, सर्वज्ञ हो गया, फिर उसका क्या, फिर वो करेगा क्या, तो सर्वज्ञ हो गया फिर उसका क्या कोई कर्तव्य है, कुछ करेगा ना। हाँ, सर्ववित होने के बाद भी कुछ काम करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है ना, सर्ववित होने के बाद में एक ही काम बाकी रह जाता है, क्या ना, भजन करना बाकी रह जाता है। स सर्वविद भजते माम, वो मेरा भजन करता है, सर्वज्ञ होकर के आप भजन करता है। कैसा भजन, न सर्व भावे न भारत, हरेक भाव, मुख्य जो चर भाव है, दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य आदि, ये किसी भी भाव में लेकर के हरेक भाव से भाव भक्ति करने लगता है। जब भगवान को इस प्रकार जान लेता है तो भाव भक्ति के द्वारा भगवान के भजन में लग जाता है। यही कहते हैं तो मतलब उल्टी प्रकार से उसको समझ, इस प्रकार समझा जा सकता है, जो भगवान को भाव के द्वारा भजते हैं तो वो सर्वज्ञ हैं, वो सर्वज्ञ हैं, वो भगवान को जान सकते हैं। भले यहां शंकर ब्रह्मा मरीचि आदि मरीचि मुख्या बोले हम नहीं जान पाते हैं, लेकिन यहां तो जान सकते हैं। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लास्ट में कहते हैं कि ये जो गीता में कहते हैं कि ओ अर्जुन मेरे से सुनो, और मया सक्त मना पार्थ जोग जुंजन मदाश्रय असंसंग समग्रमांग जथा ज्ञास सीमा सुनो। समग्र, कोई डाउट नहीं कि तुझे कुछ बाकी रह गया जानने में, नहीं, सब कुछ जान जाएगा, अब सुनो। तो इस प्रकार प्रामाणिक स्रोत से, साक्षात भगवान से, इस प्रकार से भगवत ज्ञान को अगर सुना जाए, समझा जाए, और वो जान करके भजन किया जाए भगवान के भक्त के साथ, तो भगवान को जानने में कोई तकलीफ नहीं है। नहीं तो बाकी कोई उपाय वैदिक ज्ञान द्वारा, साधना द्वारा, बड़ी लंबी आयु द्वारा, बड़े पुष्ट पोषण द्वारा भगवत ज्ञान नहीं हो सकता। हम चैतन्य लीला में देखते हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में पहुंचे, सबसे पहले अब संन्यास लेने के बाद पिचिंग मिशन था उनका, प्रचार करना चाहते थे, उनको पिचिंग जोन सबसे पहले ओडिशा मिला, प्रचार करने मां की आज्ञा से ओडिशा गए। ओडिशा में जाकर के बोले अब उनका पास तो ना तो धन था, ना जन था, ना कोई प्रोजेक्टर था, ना कोई बुक्स था, ना कोई ये था, तो क्या प्रचार करूं, स्टूडेंट पिचिंग, कंग्रीगेशन पिचिंग, लाइफ मेंबरशिप पिचिंग, या कौन सा पिचिंग करूं, कैसे को। तो भगवान ने सोच विचार करके ऐसे उपाय किए, पूरे उत्कल प्रदेश से देखे कि पूरे ओडिशाओं के सारे लोगों का जो आस्था है वो तो भगवान जगन्नाथ में है, भगवान जगन्नाथ में प्रति सभी आस्थावान है, और सारे जगन्नाथ के जो मुख्य सेवक के रूप में है गजपति महाराज, जिसको अपॉइंट किए हैं, वो भी गंगा कुल निवासी श्री सार्वभौम भट्टाचार्य, प्रकांड विद्वान व्यक्ति हैं, जिनको जगन्नाथ जी के हेड प्रिस्ट के रूप में नियुक्ति दिया गया था, और उनको सार्वभौम भट्टाचार्य को तत्कालीन भारतवर्ष में सारे संप्रदाय के सारे बड़े बड़े विद्वान उनको सम्मान करते थे, विद्वान पुरुष के रूप में, वेदज्ञ पुरुष के रूप मानते थे। ऐसे ख्याति संपन्न और बड़े सम्मानीय और मुख्य पूजक श्री सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु ने बोले उनको टारगेट किया सबसे पहले, बोले ऐसे एक शिकार करूं ताकि एक में वन इन ऑल सारे फंसेंगे, और बिल्कुल फंसे, भगवान की जो टेक्निक है, सीधा सार्वभौम को टारगेट किए, वो केवल एक हफ्ता में विद इन वीक उनको ऐसे हार्ट ट्रांसप्लांट किए कि वो ऐसे बदल गया कि सोचा भी नहीं जा सकता। और कैसे उनको बदलाए, कोई युक्ति कोई कुछ नहीं है, उनको स्टूडेंट बने। ऐसे ओबीडियंट स्टूडेंट बन गए सार्वभौम भट्टाचार्य के पास, तो ऐसे ओबीडियंट स्टूडेंट बने सो तो कृतकृत्य हो रहा था, अपने को धन्याति धन्य मान रहा था। ऐसे छात्र मुझे मिला, 7 दिन तक कंटिन्यूअस पढ़ाया, छुट्टी लेकर के गए नहीं ड्यूटी में। 7 दिन के बाद में और टीचर स्टूडेंट तो पूछा नहीं, टीचर पूछने लगा, उल्टी बात स्टूडेंट अभी तक नहीं पूछ रहा है, वो बैठ के फिर झपकी भी नहीं, बिल्कुल अटेंटिव लिसनिंग कर रहे थे। सर हम देख रहे थे चश्मा खोल करके, ओह क्या सुन रहा है, वाह एक मुद्रा में बैठ के सुन रहे, बड़े प्रश्न। 7 दिन तक कुछ पूछे ही नहीं, भट्टाचार्य को लगा डाउट, तो क्या सब ऐसी सुन रहा है, जरूर समझा होगा, बिल्कुल बढ़िया से सुन रहा है कोई। 7 दिन के बाद पूछे, बोले श्री चैतन्य जी, कृष्ण चैतन्य जी ना जी, गुरु जी, और जब मैं बोल रहा हूँ ठीक ठीक आशा तो कर रहे थे, बोलेगा कि हम सब बढ़िया से समझ रहा हूँ करके, यही उत्तर आशा मन में रख करके पूछे, बोले ठक समझ में आ रहा है ना सब मुझे बोल रहा हूँ, और उत्तर क्या मिला, गुरु जी कुछ समझ में नहीं आ रहा बताओ इतने उनके भाव, अरे मैं ये सोचा था तू कुछ नहीं समझ पा रहा है, समझ नहीं रहा तो पूछ भी नहीं रहा है, चुप बैठा है, ये कैसा स्टूडेंट है तूने, ऐसे विस्मय पैदा किए। इसने अच्छे स्टूडेंट बन करके 7 दिन बैठे और 7 दिन के बाद ऐसे विस्मय पैदा किए, अरे चुपचाप बैठ के सुन भी रहा है, बोलते समझ भी नहीं रहा हूं, खोलकर बोल रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बैठ के सुन रहा है सारे, पूछ भी नहीं रहा है। अब ऐसी विस्मय क्रिएट करके उनके साथ बातचीत करने लगे, इतने नम्रता नम्रता से बातचीत करते करते आत्माराम श्लोक लेकर के आए और उसी को उन्हीं के द्वारा अर्थ कराए, और उनके अर्थ करने के बाद फिर स्वयं अर्थ किए उनसे परमिशन लेकर के। अब जब एक एक अर्थ करने लगे, पंडित सार्वभौम सुन सुन करके उनका टेम्परेचर डाउन होने लगा धीरे धीरे। जब 16-17वां अर्थ करने लगे फ्लाट, आप पूछने वाले हु आर यू, आप बताए कि आप है कौन, आप मनुष्य हो ही नहीं सकते हैं, प्लीज गिर पड़ा बिल्कुल, सत्र का बताओ आप कौन है, आप हो ही नहीं सकते हैं कोई साधारण पुरुष। तो भगवान बोले चलो बहुत हो गया, एक हफ्ता कोर्स हो चुका, अब तो बता देना चाहिए अपने आईडी प्रूफ। तो भगवान ने तुरंत, क्योंकि उनके उपास्य देव नारायण थे, चतुर्भुज रूप में उनके सामने प्रकट हो गए, री सार्वभौम देखा, शंख चक्र गदा पद्मधारी साक्षात नारायण विग्रह। अब उसके बाद में देखा फिर बांसुरी बजाते हैं और दुभुज, अब तो सार्वभौमों को दिमाग बिल्कुल, 100 श्लोक रचना की स्तुति किया उन्होंने। और उसी दिन के बाद, वही हफ्ते भर के बाद में, सारे पुरी के जितने बड़े बड़े पंडित सेवायत सब थे, यहां तक राजा कटक में रहता था, यहां तक भी मैसेज चला गया, क्या पंडित सार्वभौम का हेडलाइट बदल गया, क्योंकि सार्वभौम ऐसे थे, ऐसे तिलक वाले थे, अब हफ्ता भर के बाद ऐसे हो गए, वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल हो गया, भरी ये क्या हो गया अब रुद्राक्ष माला छोड़ करके कंठी तुलसी माला ले लिए, अब तो जिसको देखो प्रणाम करने लगे, अब ऐसे हो गए, अब उठ करके जगन्नाथ मंदिर न जा करके महाप्रभु के पास आते थे, समझ गए ये तो साक्षात चलंत विग्रह है जगन्नाथ जी के, ऐसे मानते थे। और जब लोग पूछने लगे, बोले पंडित जी हो क्या गया, ये कैसे, नारे पूछो मत, आप नहीं जानते, ये जो नया सन्यासी भी आया ना, वो तो साक्षात नारायण है, साक्षात चलंती प्रतिमा जगन्नाथ जी के। सब लोग आश्चर्य हो रहे थे, बोले आप सार्वभौम जी आप ऐसा कहते हैं, क्योंकि उद्भट विद्वान करके सारे प्रसिद्ध थे, उनके मुख से ऐसा कह रहे हैं, तो सबको बोलते वो तो मानना पड़ेगा, ये तो कोई अरे गरीब व्यक्ति कहने से कोई बात है। तो सभी लोग महाप्रभु को देखने के लिए दौड़े, बोले अच्छा सार्वभौम बोल रहे हैं कि आप साक्षात ईश्वर हैं, देखने के लिए आए। लेकिन महाप्रभु जैसे सभी का मन में उनके पास देखने के लिए इच्छा हुआ, भगवान ने सीधा साउथ इंडिया चले गए, जा दक्षिण भारत चले गए, पुरी में रहे ही नहीं, राजा से प्रजा तक सेवा जब विकल हो रहे थे महाप्रभु के दर्शन के लिए, भगवान सबको छोड़ करके चले गए दक्षिण भारत। कविराज गोस्वामी कहते हैं महाप्रभु क्यों चले गए इतने देर तक दौड़ाई सर, बोले उनका उत्कंठा को प्रबल करने के लिए, अब बिल्कुल तेज हो जाए प्रबल उत्कंठा, तब भगवत दर्शन होगा। जब तक बहुत अकेले साधारण थोड़ा हाँ ठीक है देख लेंगे, ऐसा नहीं। जब तक उत्कंठा सीमा तक नहीं पहुंचता, प्रबल से प्रबलतर उत्कंठा नहीं होता, तब भगवत दर्शन नहीं होता। भगवान साथ में वहीं पे थे, वहीं से निकल गए। जब सब उनको देखना चाहे, कई बार देखे होंगे, मिले होंगे, पहचानते नहीं थे, अभी जब पहचान में आ गया, ये पहचान कैसे हुआ? कई बार महाप्रभु हमेशा मंदिर में जाते थे, आते थे, पब्लिक से देखते थे, लेकिन देखना देखना नहीं होता है। अगर कान से नहीं देखना होता तो देखना देखना नहीं होता। आज जब कान से देख लिए, सार्वभौम बता रहे हैं कि वो ऐसे हैं, जब सुन लिए तब अभी देखना चाहते हैं, असली दृष्टि अभी देखना चाहते हैं। अभी देखने के लिए तो महाप्रभु रहे नहीं, चले गए। इतने बेचैन होने लगे, उनका बेचैनी को बिल्कुल टॉप लेवल तक बढ़ा दिए। तब जाकर के आए, आए तो पूरे प्रदेशी जितने बड़े बड़े सब थे, गण्य मान्य व्यक्ति सब, राजा से प्रजा तक एक साथ में, प्रिस्ट बोल्ड आउट, क्लीन बोल्ड, कोई बाकी नहीं रहे। इस प्रकार से तो सार्वभौम पंडित जब इस प्रकार महाप्रभु को डील कर रहे थे, तो उनके जो साला थे, सालाना भी नहीं थे, गोपीनाथ आचार्य, उनके साथ जुक्ति हो रहा था। वो बोले तो साक्षात ईश्वर है, उनको क्या पढ़ाएगा? तो जीते आप कैसे मान सकते हैं ईश्वर करके, कैसे मान सकते हैं? शास्त्रार्थ करने लगे। तो गोपीनाथ आचार्य बोले सार्वभौम, मैं आपके साथ शास्त्रार्थ कर नहीं सकता हूं, आप तो प्रकांड विद्वान है, सारे शास्त्र में आपके बड़े प्रसिद्धि है, मुझे जानकार, मैं आपके साथ युक्ति करना नहीं चाहता हूं, लेकिन यही कहता हूं कि जो शास्त्र में आप पंडित्याय रखता है, उसी शास्त्र में बात लिखा गया। क्या लिखा गया? इस शास्त्र में लिखा गया है कि शास्त्र ज्ञान के द्वारा भगवान को समझा नहीं जा सकता, ये शास्त्र में लिखा गया। तो मैं क्या कहूं, तू शास्त्र ही पढ़ा है, केवल शास्त्र में समझ नहीं सकता भगवान को ना। भगवान को जानने के लिए बोले कैसे भगवान को जान सकते हैं? वो तो बता रहे थे अनुमान के द्वारा जान सकते। बोले अनुमान के द्वारा भगवान को जाने में मूर्खता, भगवान को जानने के लिए एकमात्र उपाय है भगवत कृपा। तो सर्वम बोले भगवान की कृपा आपके ऊपर है, आप जान लिया, क्या प्रूव है उसका? कैसे हम प्रूव करेंगे कि आपके ऊपर भगवान की कृपा है, आपको जान लिए? नहीं, कृपा है कि मैं बोल रहा हूं। और आप इतने घंटे, 9 घंटे तक बैठे रहे उनके पास में, सारे लक्षण को देखा, इतने आश्चर्य विस्मय, तभी नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि उनके कृपा नहीं है। और जिस दिन उनका कृपा हो जाएगा, आप ही खुद ही बताएगा इस बात को। 1 हफ्ता के बाद वही बता रहे थे गोपीनाथ के सामने, सार्वभौम आकर बोले गोपीनाथ, उस दिन अगर आपका कृपा नहीं होता, प्रभु की कृपा नहीं करते, क्योंकि भगवत कृपा हमेशा भक्त कृपा के अनुगामी नहीं है, और डायरेक्ट कृपा नहीं करते। जब तक भक्त कोई कृपा नहीं करते हैं, तब भगवान कृपा नहीं करते। तो इसलिए बोले सार्वभौम भट्टाचार्य गोपीनाथ, आज आपके मदद के वजह से, आज इन्हीं का कृपा मेरे ऊपर हुआ, मेरा इतने बड़े परिवर्तन हुआ, नहीं तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता। मेरा हृदय तो साक्षात जड़ और तर्क से लोह पिंड की तरह था, स्टेनलेस स्टील की तरह, इतने हार्ड था हृदय, कठोर था, ऐसे कठोर लोहा के जैसा हृदय को बिल्कुल पिघला करके पानी पानी मेल्ट कर दिया। इतने प्रचंड प्रताप इनका है, इसी प्रचंड प्रताप है, थोड़ी समय बिल्कुल पानी पानी कर दिए। तो भगवान ने इस प्रकार जो परिवर्तन कराए थे, ये उनका तरीका, इतने नम्रता, इस प्रकार के हिसाब से जा करके सरों तो उनको समझाए थे। तो तभी भी हर प्रकार से हम देखते हैं कि किसी ज्ञान पूजा आराधना साधना और आयु किसी भी प्रकार से भगवान को ठीक से जान लेना ये संभव नहीं है। तो अपना चेष्टा बल क्रिया से नहीं जान सकते, तो किसी भी प्रकार से भगवत कृपा की आवश्यकता है। भगवत कृपा को पाने के लिए भक्त कृपा की आवश्यकता है, कि बिना भक्त के कृपा से भगवान ही कृपा नहीं करते। तो इस प्रकार भक्त के अनुगत्य में रह करके अगर उनको सेवा करें तो भगवान प्रसन्न होते हैं, कृपा करते हैं, तो भगवान को समझ पाते हैं। तो यही शिक्षा को, सिद्धांत को देने के लिए भगवान शंकर आज भगवान के सामने इतनी बड़ी प्रसंग स्तुति प्रस्तुत कर रहे हैं। हरे कृष्ण। समय हो चुका है, अगर किसी का कोई प्रश्न है एक आध दो। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की, संवेद भक्त वृंद की।